कल कितना रावण ने देखो सीता जी को माया के द्वारा राम जी का कटा हुआ सिर दिखा करके तरह तरह का प्रलोभन दिया, परंतु वहां सुरमा नाम की, शर्मा नाम की जो राक्षसी थी उसने ये सब बात उसकी प्रकट कर दी। अकस्मात रावण के पास में सूचना आई कि आपको प्रहस्त सेनापति तत्काल सभा भवन में आकर कुछ आवश्यक विचार विमर्श करने के लिए देखना चाहते हैं, तो सब काम छोड़ करके रावण सभा भवन में गया। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि रावण के सभा भवन में पहुंचने पर जब ये बाहर लंका में कोलाहल हो रहा था तो उस कोलाहल को सुनकर के रावण ने अपने सभा के अंदर रहने वाले लोगों से पूछा, क्या बात है मंत्रियों, इतना बड़ा कोलाहल क्यों हो रहा है? हमको बड़ा आश्चर्य है कि इतना हल्ला गुल्ला चींच ये कौन कर रहा है? लंका में रहने वालों की आवाजें मैं पहचानता हूं, परंतु ये किन की आवाजें हैं पूरा पता नहीं चलता है। मैंने सुना है कि बंदर लोग समुद्र को लांग करके यहां लंका में आ गए हैं। क्या वे जहां पर वे बंदर थे वहां से वे आगे बढ़ चुके हैं या जहां हैं वहीं हैं? जरा आप मालूम करके हमको बताओ। तूष्णिका नीक्षितो अन्योनम विदित्वा राम विक्रमम। और आप लोग भी मुझे ये बताओ कि मैंने आपके सामने पहले भी विचार किया था कि सीता का जो मैंने हरण किया है उसके कारण राम नाराज होकर हम पर सेना से चढ़ाई करता है, तो आप लोग हमारे इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, इस विषय में आपका क्या मत है? क्योंकि आप लोगों का मत देख करके ही मैं आगे कुछ विचार कर सकता हूं। राम के पराक्रम को भी मुझे कई लोगों ने बताया है, बांदर की सेना का पराक्रम भी बताया है, परंतु मुझे तो अपनी सेना पर और आप पर और मेरे पर पूरा भरोसा है। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो माल्यवान नाम का जो मंत्री भी था और रावण का नाना भी था, उसने सारी सभा में राक्षसराज रावण से बड़े स्नेह के साथ कहा कि हे राजन, आपने अपने जीवन में बहुत विद्या का अध्ययन किया है, आप नीति के विद्वान हो, नीति के अनुसार चलने वाले हो, यदि आपको चिरकाल तक लंका में राज्य करना है और शत्रुओं को जीतना है और गुप्तचरों के द्वारा जो आपने जानकारी प्राप्त की है, मैंने भी जैसा सुना है उसके अनुसार वर्तमान में जो आप नीति अपनाए हुए हैं ये हमको उचित मालूम नहीं देती है, इससे आपका ऐश्वर्य अखंड नहीं रहेगा, आप अपनी नीति पर एक बार विराम लगाओ और हमारे निवेदन के अनुसार, राक्षसों के निवेदन के अनुसार आपको अब राम के साथ में संधि करनी चाहिए। राम बहुत बड़ी शक्ति लेकर लंका में पहुंच चुके हैं और अभी कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं हुआ है, अभी कोई आक्रमण नहीं किया है, और वो राम अपने हक की चीज मांगते हैं। यदि तुमको अपना बल पौरुष दिखाना था तो तुम राम को वहां पर मार करके, लक्ष्मण को मार करके फिर सीता को लाते तो हम सब समझते कि ताकत के बल पर कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन राम से तुम डर तो उसी दिन गए थे ना कि जिस दिन तुमने वेश बदल करके राम और लक्ष्मण को माया से दूर भेजा और अकेली सीता को उठा लाए। आप विचार करो रावण, आपके इस पाप के साथ में भीतर से कोई सहमत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको राम के साथ संधि कर लेनी चाहिए और जो काम तुम अभी कर रहे हो इस काम के द्वारा तुमको अंत में लाभ नहीं है। रावण, आपने देवताओं के साथ, गंधर्वों के साथ और दूसरे प्राणियों के साथ बैर विरोध कर लिया है। सबके साथ विरोध करने वाले व्यक्ति का अंतिम स्वरूप अच्छा नहीं होता है। प्रारंभ में विधाता ने दो पक्ष बनाए थे, एक देव पक्ष और एक असुर पक्ष। असुर पक्षों ने अधर्म का पालन किया और देव पक्ष ने धर्म का पालन किया। उस धर्म के कारण से देवताओं में शक्ति बढ़ती गई और असुरों में शक्ति क्षीण होती गई। धर्म जब अधर्म को खाता है तब सतयुग होता है और जब अधर्म है वो धर्म को दबाता है तब कलयुग आता है। आपने धर्म का ह्रास किया है, अधर्म को आपने स्वीकार किया है, अतएव आपके प्रति लोगों में रोष बढ़ता चला गया है। आपने अपने प्रमाद के द्वारा जब अधर्म रूपी सांप को बढ़ाया तो वो सांप अब आप ही को खा गया। विषयों में जब आप प्रसक्त हो गए उस समय में आप ऋषियों के द्वारा उद्विग्न रहने लगे। ऋषि मुनि कोई यज्ञ करें तो आपको डर लगता था क्योंकि आपका मन भीतर से कच्चा हो गया। महाराज, इन ऋषियों का प्रभाव कम नहीं है, इनकी ये यज्ञाग्नि में बड़ी शक्ति होती है, तपस्या की अग्नि में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए आप इनका धर्म देख करके अपने धर्म में स्थित रहिए। ये वेदों का विधिवत उच्चारण करके आहुतियां देकर ब्रह्म घोषान उदीरयन वैदिक वाक्यों के द्वारा ब्रह्म घोष करके सब दिशाओं के अंदर आपके द्वारा भगाए गए थे। वे ही देवता लोग और वे ही ऋषि आपका बदला लेने के लिए तत्पर हैं। आदत्ते रक्षसाम तेजः धूमो व्याप्य दिशो दिशः, दसों दिशाओं के अंदर घूमने के कारण से, दौड़ने के कारण से इनकी मिट्टियां आज भी उड़ रही है। उन देवताओं का जो ताप है, मन का संताप है, वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप ब्रह्मा जी के पास गए थे तपस्या करने के लिए, तब ब्रह्मा जी से आपने दो से अपनी मृत्यु नहीं मांगी, एक मनुष्य से और एक बानर से। याद रखो, आज लंका में मनुष्य और बानर दो ही प्राणी आए हैं। ये रींच और लंगूर ये बानरों में ही आते हैं। ये बड़े बलवान होकर इस समय गर्जना कर रहे हैं। तुम कहते हो ना कि आवाजें किसकी है, ये आवाजें उनकी हैं। इनके अंदर तुम्हारे पाप के बदला लेने की भावना पैदा हो रही है। ये सब के सब राक्षसों का विनाश करने का संकल्प ले चुके हैं। ये देखो मेघ कितने भयंकर बोलते हैं, ये देखो आकाश के अंदर जो मिट्टी उड़ी हुई है इसका रूप रंग सब खराब हो चुका है और जगह जगह गीद लोग चिल्ला रहे हैं, उल्लू चिल्ला रहे हैं और लोमड़ियां चिल्ला रही हैं। लंका में बहुत दिनों से अपशकुन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। देखो गवों से गधा पैदा हो रहे हैं और मूषका नकुले सुचे और नवलियों से मूषक पैदा हो रहे हैं, हथनियों से ये बिलाव पैदा हो रहे हैं, सुअर और कुत्ते एक साथ चर रहे हैं, राक्षस और किन्नर ये मनुष्यों के साथ नाचते हैं। इसका मतलब है कि समय बड़ा खराब आने वाला है, ये समय राक्षसों के विनाश का है और जितनी सुख सारिकाएं हैं ये बड़ी कर्कश आवाज में ची ची चू चू ऐसा करती रहती हैं। इससे यह मालूम देता है कि ये हमारा लंका प्रदेश ये बहुत बड़े बारी खतरे में है। राम सामान्य पुरुष नहीं है, रावण विष्णु मन्या महे रामम, साक्षात विष्णु ही ब्रह्मा जी के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए राम रूप से यहाँ आए हैं। केवल मनुष्य नहीं है, साक्षात विष्णु का रूप है। तुम विचार कर लो कि जिसने इतना बड़ा समुद्र बना दिया वो तुम्हारी लंका को क्यों नहीं ध्वस्त कर देगा। इसलिए हे रावण उठो, करो हिम्मत और चलो हम लोगों के साथ। हम सेनापति लोग चलते हैं, सब बड़े बूढ़े तुम्हारे साथ चलते हैं। और देखो जैसे विभीषण जाकर के राम जी की शरण में चला गया, जो विभीषण लंका में आपके आंख दिखाने पर रह नहीं सकता था, वही विभीषण आज राम जी के प्रभाव से लंका को आंख दिखा रहा है। देखा राम जी के शरण का प्रभाव, चलो राम जी के साथ संधि कर लो और उनके चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो और कह दो कि लंका और अयोध्या एक है। कह दो राम से कि महाराज आज अयोध्या पर कोई विपत्ति आएगी, रावण उसको अपनी विपत्ति समझेगा, और लंका पर कोई विपत्ति आए तो उसको आप अपनी विपत्ति समझो। सीता को समुपस्थित करने के बाद राम जी महाराज आपसे ऐसा प्रेम करेंगे जैसे सुग्रीव के साथ प्रेम किए हैं। देखो रावण, राम जी किसी राजा को लेकर नहीं आए हैं, अपने भरत की सेना को लेकर नहीं आए हैं। राम जी के पास बांदरों की सेना है। ये बांदरों की सेना भगवान ने खुद ने उपार्जित की है, अपनी कमाई की सेना है, क्योंकि राम जी ने सुग्रीव के साथ मैत्री करके पहले सुग्रीव का भला किया है। देखो सुग्रीव उनकी शरण में आया तो आज सुग्रीव राजा हो गया। विभीषण उनकी शरण में गया है तो हमने सुना है कि लंका का राजा विभीषण बना दिया गया राम जी के द्वारा। तो राम जी ने जब सुग्रीव को राजा बना दिया था तो अंत में वो बना के ही छोड़े, और विभीषण को उन्होंने राजा बना दिया तो वो बना करके ही छोड़ेंगे। इसलिए रावण तुम ऐसा अवसर मत दो जिससे सारे राक्षस संकट में पड़ जाए, आओ तुम राम से संधि करो। ये बात सुनकर के रावण ने बड़ा क्रोध किया। माल्यवान को वह घूर घूर करके देखने लगे और रावण की भ्रुकुटी एकदम तीखी हो गई। रावण इस बात को सह नहीं सकता था, इसलिए उसने माल्यवान जी से कहा, माल्यवान जी कभी कभी दुनिया वाले बड़ा अच्छा लड्डू देते हैं, ये लड्डू है लड्डू खा लो, और अनजान आदमी उस लड्डू को खाता है, बड़ा मीठा लगता है, पूछते है कैसा लड्डू, के भाई बड़ा मीठा है, बहुत स्वाद आता है, थोड़ी देर में वो आदमी मर जाता है। क्यों? कि उसके अंदर जहर मिला हुआ है। ऐसे ही आप हित बुद्धि से बात कहते हो, लेकिन आपकी बात में बड़ा भारी जहर फंसा हुआ है, जहर मिला हुआ है। आपको ये पता ही नहीं है कि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आपकी उम्र बहुत हो गई, तो बुढ़े आदमी को याददाश्ती बिल्कुल नहीं रहती। दूसरे के पक्ष की आप बड़ाई कर रहे हो। नैतत् श्रोतगतम मम, आप क्या बोलते हो पूरी बात मैंने सुनी नहीं, मैं तो और काम में लगा रहा। इतनी बात सुनी कि तुम राम को राम 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 को मित्र मान लो, सीता को राम को दे दो, इतनी बात कही ना। देखो राम के सामने आप इतने डरते क्यों हैं? राम एक मनुष्य है और प्राणी है, वैसे राम भी है। आप विचार करो कि राम की इतनी महिमा गाते हो, राम के साथ एक भी देवता नहीं आया, राम के साथ एक भी गंधर्व नहीं आया, राम के साथ एक भी पृथ्वी का राजा नहीं आया, राम के साथ कोई भी जो है इसका भाई बंधु भी नहीं आया। ये राम अकेला और बंदरों को लेकर आया है। यदि इस राम का कोई संसार में प्रभाव होता तो भाई हम मरेंगे मारेंगे, कुछ भी होगा, देवता तो सामने आते ही ना। जिन देवताओं को मैंने पराजित किया, जो देवता मेरा बदला लेना चाहते हैं, वे देवता यदि देखते कि राम में अपार शक्ति है, आज राम के साथ में अपने मिल जाए, फिर राम इनको मार देंगे, रावण को तो बड़ा अच्छा रहेगा, पर कोई देवता नहीं है यार। राम में शक्ति होती तो मेरे सारे शत्रु आज राम में मिल जाते, पर वो जानते हैं कि इसे राम के साथ में मिल जाएंगे तो रावण से व्यर्थ ही कौन दुश्मनी मोल ले, रावण तो फिर हमको मारेगा। और दूसरी बात है कि और कौन पक्ष ले भाई, ये स्वयं मां बाप के द्वारा अयोध्या से निकाला हुआ है। ऐसे राम की आप महिमा गाते हो, मैं राक्षसों का स्वामी, देवताओं के अंदर भय करने वाला, और मुझे आप सब प्रकार पराक्रमों से हीन मान रहे हो। दो बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी इतनी बड़ी प्रसिद्धि देख करके हे माल्यवान जी, आपको मेरे से जलन हो गई कि ये रावण इतना बड़ा वीर क्यों हो गया, इस कारण से मन में आपकी जलन है, उस जलन से आप बोलते हो। और या शत्रु के आप गुप्तचर हो, अंदर ही अंदर शत्रु ने आपको बहुत बड़ा धन दिया है, उससे आप गुप्तचर हो शत्रु के। जैसे मैंने वहां गुप्तचर भेजे, ऐसे राम के तुम गुप्तचर हो, पता चल गया। आप मेरे नाना हो, इस कारण से मैं आपके सामने ज्यादा कुछ कह नहीं सका हूं। मैंने आपको कठोर बातें कही नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मैं आपकी कठोर वाणी सुनने के योग्य भी नहीं हूं। ऐसा कौन पंडित होगा, समझदार व्यक्ति होगा, जो शत्रु के बिना प्रोत्साहन के मेरी सभा में आकर मुझे कटु बात कह जाए। आप विचार करो कि सीता को लाया हूं तो मेरे भुजा के बल पर लाया हूं, और सीता को यदि मैं लाकर के युद्ध की संभावना पहले से ही जानता था, युद्ध होगा तो होगा, मेरी भुजाओं का वो बल कहीं समाप्त नहीं हुआ है। करोड़ों बानर आ जाए तो क्या हुआ, सुग्रीव आ जाए तो क्या हुआ, राम आ जाए तो क्या हुआ, लक्ष्मण आ जाए तो क्या हुआ, ये तो आने ही थे, ये तो लड़ने ही थे, मुझे मालूम था। ये सोच करके विचार करके ही मैंने सीता का हरण किया है। और नाना जी, यदि मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे बल का क्या होगा, देवता तो अब कभी युद्ध करेंगे नहीं, दूसरा कोई युद्ध कर सकता नहीं, अतएव मेरे पराक्रम का क्या होगा, मैं अब कहां पराक्रम दिखाऊंगा। इसलिए द्विधा भज्येयम अप्येयम न नयेयम तो कंचन है। रावण का एक स्वभाव है नाना जी, रावण को पकड़ करके कोई तोड़ दो भले ही, रावण टूट सकता है, रावण झुक नहीं सकता। ये मेरा स्वाभाविक दोष मानो तो मान लो, ये मेरा स्वभाव पड़ गया, ये स्वभाव हटने वाला नहीं है। और आप कहते हो कि समुद्र के ऊपर उन्होंने पुल बना लिया, राम ने बड़ा पुरुषार्थ कर लिया, समुद्र के ऊपर पुल बनाया, इसका अर्थ है कि ये लोग समुद्र को पार नहीं कर सकते और हम लोगों को उधर उत्तर में जाना होता है तो हम तो एक कदम रखते हैं उसी में ही समुद्र को पार कर लेते। इसी में देख लो, तुम तो समुद्र के ऊपर राम ने पुल बनाया इस बात की प्रशंसा करते हो और हम कहते हैं कि समुद्र के ऊपर राम को पुल बनाना पड़ा इसलिए राम में ताकत नहीं, वो पुल से आएगा। क्यों भाई, हमने कब पुल बनाया उधर जाने के लिए? हम हमारी ताकत से जाते हैं, हम हमारी ताकत से आते हैं, इसलिए जैसे हमने पुल नहीं बनाया तो राम ने पुल बनाया, तो राम तो पराक्रम से शून्य है। मैं आपके सामने नानाजी सौगन खा के कहता हूं कि यहां से बानर सेना वापिस जीवित होकर के नहीं जा सकती। मुझे तो एक ही बात की चिंता है, क्या कि लंका के अंदर इतने बांदरों का मांस ये राक्षस लोग कब तक खाएंगे, ये चिंता है। क्योंकि बांदर तो अभी मर जाएंगे, फिर इनका मांस पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, क्योंकि ये तो थोड़े से बंदरों से मांस से तृप्त हो जाएंगे। इतने बड़े मांस को हम लोग यहां क्या करेंगे, इस बात की चिंता है। इसलिए नाना जी, न मैं सीता को दूंगा और न मैं संधि करूंगा, और यदि राम जी यहां युद्ध करने के लिए आए तो मैं इनको युद्ध प्रदान करूंगा। माल्यवान ने मन में सोचा कि भाई क्या बताएं, भैंस के आगे बेन बजाए भैंस खड़ी पकड़ाए, कोई भैंस के सामने पूंगी बजाने से भैंस के क्या फर्क पड़ता है भाई, भैंस के आगे पूंगी बजाओ इधर मुंह उधर मुंह कर लेगी, आप उधर जाके पूंगी बजाओ तो करते यूं कर लेगी, उसको पता ही नहीं पूंगी है, इसकी आवाज सुनो भाई। तो भैंस के आगे बीन बजाए, बीन माने बीणा, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पकड़ाए। माल्यवान ने देखा कि ओहो, मैंने तो इनके सामने फालतू ही बातें करी। तो भाई माल्यवान तो अपने घर चला गया। इधर रावण ने अपने साथियों से विचार विमर्श किया कि भाई अपने को कैसे कैसे क्या क्या काम करना चाहिए। तो वहां पर विचार करके रावण ने कहा कि देखो, ये अपनी लंका है, इस लंका में चार दरवाजे हैं, दरवाजों के बिना और परगोटों के ऊपर आए बिना तो ये बांदी सेना आ नहीं सकती। तो चारों परकोट, चारों ही दरवाजों पर बड़े श्रेष्ठ योद्धागण वहां पर रख दिए जाए, जैसे पूर्व दरवाजे पर प्रहस्त चला जाए, दक्षिण की तरफ महोदर और महापार्श्व ये सेना लेकर चले जाए, और पश्चिम की तरफ मेरा पुत्र इंद्रजीत चला जाए मेघनाथ, और उत्तर की तरफ सुक और सारण चले जाए और मैं भी वहां जाऊं, क्योंकि ये बांदरी सेना उत्तर की तरफ है तो सबसे मजबूत ये दरवाजा है, चाहिए हमको। तो वहां पर मैं सुख सारण आदि को लेकर के मंत्रियों को लेकर स्वयं जाऊंगा, और इस लंका के बीच के अंदर बहुत बड़ी छावनी डालनी चाहिए। गुलमई बहुभी सहराक्षसई, गुलम कहते हैं ये छावनियां, जगह जगह छावनी, तो बीच बीच में छावनी डाल दो, जिधर से भी सेना को विशेष जरूरत पड़े ये छावनियां उधर उस फाटक पर चली जाए और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। रावण ने कहा ये सब व्यवस्था हो गई, कहा महाराज हो गई तो अब कोई चिंता की बात नहीं, हमारी विजय भी हो गई। इस प्रकार से सब मंत्रियों को रावण ने भेज दिया और रावण उसके बाद अपने महल में चला गया। इधर भगवान श्री राम, सुग्रीव और विभीषण, जामवंत जी, ऋक्षराज, अंगद जी, और लक्ष्मण, सरब, सुसेन, मैंद, द्विविध, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल, ये सब आपस में शत्रु के यहाँ पर बैठे हुए आपस में बात करते हैं कि भाई अपने लोग शत्रु देश में आए हुए हैं, और बात करते हुए कहते हैं कि इयम लक्ष्यते लंका, ये जो सामने दिख रही है हमारे लिए लक्ष्य है लंका। देखो अभी लंका से बहुत दूर है, वो एकदम लंका में नहीं घुसे हैं, अभी तो वे सुबेल पर्वत पर है। सुबेल पर्वत से खास जो नगरी है जिसमें रहते हैं वो दूर है। वो देखो रावण पालित लंका है, जहां देवता भी नहीं जा सकते, गंधर्व भी नहीं जा सकते, उरग भी नहीं जा सकते, ऐसे हैं। तो अब भाई लंका पर चढ़ाई करनी है तो चढ़ाई करने से पहले अपने को सब विचार विमर्श कर लेना चाहिए, क्योंकि रावण भी कोई न कोई अपना विचार करता ही होगा। ऐसा जब वो बोले तो इतने में ही विभीषण जी ने कहा, महाराज एक बड़ी गुप्त सूचना हमको मिली है। क्या मिली है? कि अपने लोग तो यहां बैठे हुए थे, मैंने मेरे सैनिकों को भेजा कि तुम पक्षी बनकर के जाओ, तो मेरे साथ जो ये चार मंत्री आए थे, अनल, पनस, संपाति और प्रमति, ये चारों के चारों राक्षस यहां से लंका के अंदर गए पक्षी बनकर के, काली काली पांखें बन गई और ऐसे पक्षी गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राक्षसों की माया राक्षसों के अंदर चल जाती है। हमारे अंदर राक्षसों की माया और माने बांदरों के अंदर राक्षसों की माया, राक्षसों की माया बांदरों में, ये यहां आपस में नहीं चलती, लेकिन राक्षस राक्षस की माया में चल जाएगा। तो हमारे ये पक्षी बनकर के लंका के अंदर गए, और ये पक्षी बनकर के जाकर रावण की उस सभा के अंदर पहुंच गए, और वहां जाकर के उन्होंने सब बात सुनी है, और रावण ने जो निर्णय किया है वो आपको सुनाता हूं। कि रावण का जो प्रधान सेनापति प्रहस्त है वो पूर्व दरवाजे पर रहेगा, दक्षिण दरवाजे पर महोदर और महापार्श्व रहेंगे, पश्चिम दरवाजे पर मेघनाद इंद्र रहेगा, इसके साथ में बहुत से और राक्षस लोग रहेंगे, इनके साथ में शूल, मुदगर आदि रखने वाले कई राक्षस हैं जो इंद्रजीत को घेरे हुए रहेंगे, और ये इंद्रजीत के लिए, मेघनाद के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहेंगे, और उत्तर की तरफ रावण स्वयं रहेगा, रावण के साथ विरूपाक्ष है और उसकी सेना वो रहेगी। लंका के बीच के अंदर बड़े बड़े पड़ाव डाले गए हैं, मेरे मंत्रियों ने सब बात कह दी है, 10,000 हाथी, 10,000 रथ और 20,000 घोड़े और 1,00,000,000 राक्षस, ये एक एक जगह आपको एक एक मिलेंगे, ये इतने इतने मिलेंगे, और उसके बाद यदि ये नष्ट हो जाता है तो फिर इनके साथ में दूसरी सेना आती है। इस प्रकार से इनकी ये सब जो है सेना बटी हुई है। विभीषण जी ने जब ये बात कही तब विभीषण जी के कहने पर सुग्रीव आदि ने उन चारों को बुलाया, सुग्रीव के मंत्रियों को, और बुला करके कहा, क्यों भाई क्या बात है? ऐसी बात है ना कि बिल्कुल ऐसी बात है, माना हमने जाकर के देखा है। तब विभीषण जी ने राम से कहा कि हे राम, कुबेर के साथ जब रावण का युद्ध हुआ था उस समय में 60 लाख राक्षसों के साथ उसने सेना लेकर के कुबेर पर चढ़ाई की थी। अब आप विचार कर लीजिए कि रावण में कितना बल, कितना पराक्रम हो सकता है। अत्र मन्युर्न कर्तव्य, आपके मन में कोई किसी प्रकार से क्रोध नहीं आना चाहिए। मैं कोई शत्रुओं की बड़ाई करने के लिए नहीं बोलता हूं, न मैं शत्रुओं के विषय में आपको डराने के लिए बोलता हूं। महाराज आप चिंता मत करो, मैं उसी रावण का ही भाई हूं, मेरे पास कोई कम बल नहीं है, मैं अकेला ही देवताओं के साथ में युद्ध करने में सहायता किए हुए था। आप कोई चिंता मत करो, आपकी सेना में अपार बल है। व्यूहेदम बानरानेकम निर्मथिष्यामि रावणम, आप तो इस बानरी सेना का एक व्यूह बनाओ, एक जो है क्रम से किनको किस प्रकार से किस मार्ग पर जाकर के आक्रमण करना चाहिए, ऐसा आप विचार कीजिए। शक्ति अपने पास में कम नहीं है। राम जी महाराज ने विभीषण की बात सुनी तो कहने लगे कि देखो, ये पूर्व दरवाजे पर हम नील को खड़ा करते हैं, ये प्रहस्त्र के साथ युद्ध करेंगे। नील जिन जिन बंदरों को अपने साथ रखना चाहे वो नील ले सकते हैं। नील के साथ में हम करोड़ों बंदरों को साथ में रखते हैं, और जो दक्षिण मार्ग है वो